कूद करके चले आए पीछे से एक मौत कर। इसका फल क्या हुआ? बकरे वो मारा गया, मारा गया, उसकी लड़की आकर के उन्हीं के यज्ञ में जल मरी और शंकर जी के दूतों ने आकर के वो यज्ञ विध्वंस कर डाला और उसको काट करके फिर हवन कर। अंत में ब्रह्मा विष्णु इत्यादि समीप करके शंकर के पास में गए, यज्ञ आरंभ हुई थी, इसको किसी न किसी रूप से पूर्ण करना है। शिव जी प्रसन्न होकर के बोले हम मुझे मेरे लिए क्या दिया है, तो उसके जगह में चलिए और उसकी पूर्ण आरती की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, अच्छा ये पुण्य तो वही करेगा, अभी तो मर गया है, इसको जीवित करना है। अच्छा जाओ तो जो सामने मिल जाओ उसका सिर काट करके ले आओ। एक बकरा जा रहा था, उसका सिर ले आए और उसने जोड़ दिया, वो जीवित हो गया। बकरे का सिर किस लिए दिया? बहुत काम भोगी होता है, भक्ति शक्ति से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो जो मनुष्य सुंदर से भी पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता, वो पशु के समान बकरे के समान है, इस चीज को साबित करने। अब तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उनके चरणों में बार बार जीवन लगाए, हमने बहुत बड़ा धार्मिक अपराध किया और आपने सब कुछ क्षमा करके हमको जीवन दान करके हमको अपनी पुनः भक्ति करने का आपने सुझाव दिया। तो शंकर जी तो ऐसे मंगल पाए तो ले चुका ना, जो शंकर जी की निंदा की उसने, उनके भाव को नहीं समझ सकते। इसलिए कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी लोग महापुरुषों के या मध्यम अधिकारी के भक्तों के भी चरित्र को नहीं समझ पाते हैं, उनके चरणों में अवज्ञा करते हैं, निंदा करते हैं, अर्थ को और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा बना लेते हैं, समझते कि ये भी प्रतिष्ठा और अर्थ के रूप में, वो समझ नहीं पाते। और उपमा देकर के समझा, उत्तम महाभागवत होते हैं उन पर किसी चीज का अंकुश नहीं होता शास्त्र के विचारों में। कभी कभी अपराध करने पर भी उनका कल्याण कर देते हैं, जैसे महाराज चित्रकेतु थे, उनकी कितनी हजार स्त्रियां थी, अच्छा अपने लोग विश्वास नहीं करेंगे इसलिए उतने ही तक रख कोई कोई विश्वास कर दिया 1 करोड़ रानियां थी, किंतु थी, किंतु इस चीज को चुपचाप ही रखना चाहिए, किसी को संदेह ना है। तो पुत्र नहीं होता, वचन में प्रवीण सत समर्थ पंजीदारी थी, उनके घर में आए तो रात तुम उदास क्यों है? कोई धन की तो कमी नहीं हो गई, कोई बगावत तो नहीं हो गई तुम्हारे राज्य में, क्या चीज की कमी? अरे प्रभु कुछ चीज की कमी नहीं, सब प्रकार से ठीक हो, हमारी स्त्रियां एक एक से सुंदर हैं और बड़ी पति प्रथा है, राज्य का संचालन भी ठीक से हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी, वैभव अपार वैभव हमारे खजाने में है। तो मुझे एक बेटा नहीं है, साथ कुछ प्रजन में हमने पाप किया था, इसे एक पुत्र नहीं, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, गंडा कौन हमको पकड़ा, हमारा साथ कौन करेगा, तर्पण कौन चढ़ेगा। मैंने कहा जैसे तुम इसके लिए चिंता मत करो, हनुमान जी को पुत्र नहीं हुआ तो क्या हो गया, उनको पिंड देने की जरूरत है, डंडा पकड़ाने की जरूरत है, मैं विश्व को डंडा पकड़ा करके ले जाएंगे। विषम पितामह जी को पुत्र नहीं हुआ तो उनको डंडा पकड़ाने की जरूरत है कि मरते दम तक भी 1000 वर्ष की आयु में कौरव और पांडवों में दिखला दिया कि हमारे समान कोई भी नहीं है, उनको पानी की जरूरत पड़ी ना, भगवान की भक्ति की वजह से सबके पूज्य बने रहे। इसलिए बेटा तुम पुत्र की कामना मत करो, पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो तुम मरेगा, शांति के बदले अशांति होगी, इसके लिए चेष्टा मत करो, भगवान ने तुम्हारे इसके कर्म के अनुसार में जो कुछ लिखा है जैसा दे रहे हैं उसी में रह करके तुम भगवान का भजन कर। नहीं माने, अच्छा तो नहीं मानता है तो ठीक, मैं तुमको पुत्र देता, ये कह करके यज्ञ कराया या कुछ ऐसा यज्ञ का फल उसको दे दिए, तुम्हारी जो सबसे प्रिया रानी है उसको दे दो। उन्होंने अपनी बड़ी जो सबसे श्रेष्ठ थी बड़ी उनको उन्होंने दी खाने से, और मंत्र के बल से उनके बड़ा ही सुंदर पुनः दिखने लगा। चांद के सब दिन रात चांद के समान बढ़ने लगे, 5 वर्ष का हुआ, बहुत खूबसूरत मुस्कुराता तो मानो फूल झड़ रहे हैं। सब लोग उसी पर बलि जाते। राजा राज्य करना भूल गया और बच्चे के पास ही बैठा रहता और सबसे अधिक आदर करता उसी बड़ी रानी का, और रानियों में द्वेष हो गया, इसी रानी को आदर करता, इसी बच्चे को आदर करता, यह बच्चा मर जाए बस सब पर समता आ जाएगी, नहीं तो हम लोग को पूछता नहीं है, तेल और साबुन के लिए भी नहीं पूछता, कभी ये भी नहीं पूछता कि तुम कैसी है, क्या कर रही है, खाई कि नहीं खाई, तो सब पति का प्रेम तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने इसमें दूध में मिला करके कालकुट बेच दी और उस जग कुछ उसमें मिल गया। बड़ा भारी रोदन उठा घर में, कोई चुप कराने वाला कोई नहीं, जो ही आए सो ही हुए। रानी तो वहीं पर अचेत होकर के गिर पड़ी और बच्चे के गोद में लेने लगी, और पति पिता उसका आया रोते हुए ब्राह्मणों के सिर पर हाथ रखे, इस पर आकर के और वो भी देखा वहीं पर प्रखाड़ था पति के पर। जब कोई नहीं समझाने वाला आया तो उसी समय में अंगिरा और नारद ऋषि आए करके उनको बतलाया, तो भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? तो लड़का मर गया। मर गया कहां गया? मैंने तो यही तो सो रहा है, कहां गया? और गया तो आ जाएगा, नहीं वहां से और नहीं आएगा। अच्छा तुम विश्व के सभी लोग उसके लिए रो तो आ जाएगा। कौन किसका बेटा? अभी तक तो तुमको बेटा नहीं हो रहा था, तो ये तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? अब चला गया तो तुम्हारा बेटा कैसे? तो ये भूलता क्यों नहीं? नारद जी ने पूछा, तुम्हारा बेटा ये है ना जो चला गया, वो है किसके लिए रो रहा है? बेटे के लिए रो रहा है कि आत्मा के लिए रो रहा है? नई नई बातें सुनकर के राजा को कुछ देखना, उन्होंने बहुत से इतिहास की बातें बतलाई, उनको बोध कराया कि ये संसार ये अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से जाते हैं, ये आया हो गया, इसमें सुख और शांति नहीं है, धर्म से सुख शांति नहीं है। उनको दिव्य उपदेश दिए और दिव्य उपदेश करके वो चले गए, उन्होंने साधन किया और मुक्त हो गए संसार से। उनको भक्ति भी संकर्षण राम की भक्ति दी, अब उनका शरीर मुक्त हो गया और भगवान का पार्षद बन करके इधर उधर में विचरण करते। एक दिन की बात है, हिमालय पर कैलाश पर वो आए विमान से, विमान से उतर करके जय ही उतरे, देखा बड़ी भारी सभा लगी हुई है देवताओं की, देवताओं में ब्रह्म भक्ति लोग और सब बड़े बड़े ऋषि लोग सब उसमें बैठे, बड़े बड़े वैष्णव नारद प्रभृति सब लोग उसमें बैठे, शंकर जी पार्वती जी वो अपनी गोदी में बैठा करके और सबको उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? संसार में मत फंसना, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अंधा कुआं है जल का हुआ कुआं, और आज समझ में जलता हुआ कुआं डूब करके उसे मर करके आग में मत जलो, और ठीक इसी समय में भगवान का भजन करो, और इसी समय में वो आ गए। उन्होंने सुना हंसने लगे, हंस करके अपने बंधु शंकर जी को, बंधु है आप गुरु भाई शंकरसन के शिष्य, वो भी शंकरसन के शिष्य शंकर जी, शंकर जी के गुरु कौन है? बलदेव प्रभु है, शंकरसन राम वो है, और चित्रकेतु महाराज जी के भी वही, इसलिए दोनों गुरु भाई लगते हैं। तो उन्होंने हंस करके शंकर जी की महिमा बतला रहे हैं और पार्वती कुलोबाल जी उनकी निंदा कर रहे हैं, समझने की बात है। एक ही बात से, एक ही शब्दावली से शंकर जी की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि तू आप ऐसे हैं अपराधिक तत्व है, इतने ऊंचे उठे हुए हैं, ये सभा में इतने पुरुष लोग नारी लोग हैं, आप इस लज्जा से भी ऊपर उठे गए, भगवान के भक्ति में इतने ही आप लीन है, आपको याद नहीं ना कुछ नहीं जब पार्वती जी को गोदी में लेते हुए और ऐसी भगवान की कथाओं को आप सुना रहे हैं, ये कौन कर सकता है? बिना मुक्त पुरुष के, बिना उत्तम भक्ति के, बिना महाभगवत भागवत के ऐसा कोई कर नहीं सकता ना? इसलिए हंस करके मुस्कुरा करके शंकर जी को कहा, और सब लोग भी तुम्हारी इस बात को लेंगे कि नहीं, कहीं ये लोग कहीं तुम्हारे ऊपर में दोषारोप तो नहीं करें, आप तो महान व्यक्ति, आप विष को हजम कर सकते हैं, किया था ना, विष को हजम कर दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए आप महान हैं, किंतु थोड़ा सा इन पर भी तो ख्याल रखिए, इनके ऊपर में ख्याल रखने की नहीं, किंतु शिव की प्रशंसा उन्होंने की, हंसी दिल लगी के कृष्ण को गोपियां का देखो इसे बातचीत मत करना, ये बड़ा धूप है, अच्छा ये प्रशंसा हुआ है ना निंदा हुई, दूसरों के दृष्टि में जो अनाधिकारी है ये निंदा हुआ दोष है, किंतु रसिक वैष्णव के दृष्टि में ये महान हुआ। तो शंकर जी की उन्होंने स्तुति की इसी रूप में, किंतु पार्वती जी जो बैठी हुई थी उन्होंने सोचा जाओ हमारे पति को ये काली कह रहा है, काली तो कहा नहीं किंतु उन्होंने मन में समझा काली कहा, स्त्री को गोदी में लेकर के और उपदेश दे रहा है ये संसार से बचो और तुम इस संसार को अपनी गोदी में लिए हुए हो, पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया, यदि क्रोध की बात होती तब तो शंकर जी को क्रोध होता, किंतु उनको तो क्रोध नहीं हुआ, वो मुस्कुराते हुए उनके तरफ में देखने लगे, वो भी उनके तरफ में देखने लगे, वहां तब खुशी से दोनों चीज थे, और इनको हुआ अपमान समझा इन्होंने, अगर शंकर को शिक्षा देने वाला ब्रह्मा तक नहीं है और इस सभा में नारद इत्यादि सभी कनक नंदन तक बैठे हैं, कोई भी इनको उपदेश देने वाला नहीं, आज तुम उपदेश देने वाला गुरु मिल गया जो इनको तुम शासन करता है, जाओ तुम अशुभ होकर के जन्म, है क्या हो गया, कितने दिन तक इसको हरी कथा हमने दी और कुछ नहीं समझी, महाभागवत महावैष्णव इनको समझ नहीं पाई और उनको ऐसे कह दिया। यदि उसी समय में चित्रकेतु महाराज जी जो मुक्त पुरुष है चाहते तो कहते कि ये अभी चंपा से ऋषि पर लौट जाता, कहते ये इस अपराध से हमारा कोई भी साथ से कोई जरूरत नहीं, या उल्टे उनको अभी संबंध जाओ तुम सुपर हो जाए या टुकड़ी हो जाए तो हो जाए, किंतु उन्होंने मुस्कुराकर के अंगीकार कर मत, इसलिए कोई भी भक्त हो मुक्त पुरुष हो चाहे जिस जोनी में भी जाए कहीं भी रहे जिस अवस्था में रहेगा भगवान का प्रेम नष्ट नहीं हो सकेगा, इसे शंकर जी ने कहा पार्वती जी को, अरे तेने क्या कर दिया, महापुरुष लोगों को नरक में जाए स्वर्ग में जाए चाहे असुर जोनी में लो चाहे देवता की जोनी में हो गंधर्व की जोनी में हो मनुष्य की जोनी में उनका प्रेम कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, तो इनका तो कभी होगा नहीं, किंतु तुमने जो ये अपराध किया तुम्हारी क्या गति, ऐसा देखो इनका प्रभाव, आखिर तुमने इसको ऐसा भी संपाद दिया और ये प्रसन्न चित्त होकर के अंगीकार कर दिया और इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, ऐसे भगवान के भक्त लोग महान होते हैं, शंकर जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुमने जिंदगी का अर्थ नहीं समझा, वो तो हमारी महिमा का है, इसी प्रकार से कोई उच्च कोटि का महात्मा वैष्णव किसी उच्च कोटि के महात्मा की प्रशंसा करता है कनिष्ठ अधिकारी नहीं था, कैसे जैसे हमने कभी कहा कि स्वामी जी केवल नाम प्रचार करने के लिए भक्ति ऐसी भक्ति के दान स्वामी नहीं आए, वो किस लिए आए, महाप्रभु जी अपराधित प्रेम को जगत में देने के लिए आए, उस देने के लिए आए, ये साधारण तो अभी काल का लड़का भी कह देगा, जैसे मांस मछली मत खाओ, स्त्री संग मत करो, ड्रिंक मत करो, ये सब तो सभी लोग कर सकते हैं। भगवान का नाम करो ये कोई नहीं कर सकता है, ये बड़ी चीज नहीं है। किंतु प्रेम के साथ में हरि नाम करो ये बड़ी भारी कठिन चीज है। चैतन्य महाप्रभु इसी कि यही नहीं, इससे और भी ऊपर गोपी प्रेम देने के लिए आए थे, इसलिए ये लोग महान है। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया गया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरक्षी से नमः। कृष्ण प्रेम को दिया इसलिए महावदान्य होता है, जो कृष्ण ने भी नहीं किया। कृष्ण ही महाप्रभु है, किंतु उस लीला में उन्होंने दिया नहीं, केवल आस्वादन किया। और उस लीला में उन्होंने आचंडा यहां तक कि पशु पक्षी जितने जो अनाधिकारी हैं सबको वो ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम, हमारे रूप गोस्वामी आए उस प्रेम को देने के लिए, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि सत्संग गोस्वामी लोग, जिसके बाद में नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि जितने थे, वो इस प्रेम को देने के लिए आए। इसके पहले और लोगों ने भक्ति दी थी, उसमें वो सब चीजें आ जाती है प्रचार इत्यादि, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु ये भी दिया किस लिए, उस प्रेम को देने के लिए। खेती करने के लिए पहले तो जंगल काटना है, जंगल नहीं काटेंगे, खेत को अच्छा तरह से नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, ये करना जरूरी है। किंतु किस लिए, बीज के लिए ना, बीज देने के लिए, वो बीज है प्रेम। यदि प्रेम दिया इसलिए स्वामी जी दूसरी धारा में है, इसलिए वो प्रेम देने के लिए, इस चीज को कनिष्ठ अधिकारी लोग नहीं समझते, ऐसे लोगों को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि भक्ति की जरूरत नहीं है। यदि भक्ति की जरूरत होती तो इसकी मर्यादा तो समझ जाए कि हमारे गुरु जी को इतना महाप्रभु जी की लाइन में लेकर के रखती है, इसलिए बच्चों को समझना बड़ा भारी कठिन है। साधारण आदमी नहीं समझ सकता है कि भक्ति में उतना उन्नत होगा, वही आदमी समझेगा। इसलिए हम लोगों को इन सब चीजों से बचना है। अपराध होता चित्रकेतु महाराज का, तो असुर योनि में जाने के बाद में वो भगवान की भक्ति नहीं करते, किंतु देखा जाता है कैसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको धन नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, विश्व की कोई संपदा नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मलोक ब्रह्मांड में बनना नहीं चाहता, इंद्र के पद से कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खबा तन्ने यथा बच्च कर सुधारता प्रिय प्रियव विचुत विषन्ना मनोरम दिखते। जैसा कोई जिसको पंख ले निकले हैं, ऐसा कोई पक्षी सावक पक्षी का बच्चा अपनी दूर गई हुई मैया के लिए उसका चिंतन करता है, उसी तरह से भगवान के लिए सब समय चिंता करें। बछड़ा जैसे एक मिनट का समय नहीं खोकर के तुरंत अपनी रस्सी नहीं खोलने देता और दौड़ करके मां के स्तन में लग जाता है दूध पीने के लिए, ऐसे डां डां करता है, वैसे में भगवान के लिए हा कृष्ण करे। और अंत में प्रिया प्रिय उठते, जैसे प्रिया अपने विदेश गए हुए पति के लिए दिन रात चिंता करती है, उनका गुणगान करती है और उसके लिए सुंदर सुंदर सेवा के उपकरणों को सजाती है और सेवा करती है, ऐसे ही हमारा चित्र हम मने गोपी भाव का इंगित दिया उसमें, जैसे प्रिया प्रियतम को मानते हैं उसी प्रकार से आपको प्रियतम मान करके और अपने को प्रिया मान करके आपकी सेवा करते हैं। इंद्रों को आप बद नहीं कर सके थे, वो कहते हैं बार बार जो हमारा शरीर ये बदल दो, इस शरीर से सामर्थ्य से भजन नहीं होगा, किंतु भक्ति का कितना उसका सिम और भागवत के लक्षणों में से एक लक्षण है, जहां पर के विस्तार संस्कार चरित्र है इतना उन्नत। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जो लोग ये सोचेंगे पार्वती के चरणों में या शंकर जी के चरणों में चित्रकेतु का अपराध हुआ, वो अपराधी है। आ रहा समझ में क्या, जो लोग ये समझते हैं कि चित्रकेतु महाराज जी का अपराध श्री जी के चरण में हो, उनकी निंदा की, वो लोग
अपराधी हैं।
अपराधी हैं किसके चरणों में?
चित्रकेतु महाराज के चरणों में।
उनकी भक्ति कभी नहीं थी, प्रेम भक्ति की चरम पराकाष्ठा भाव अवस्था तक उनकी थी, इसलिए अपराधी होते तो भक्ति नष्ट हो जाती, बल्कि इसका नतीजा भोगना पड़ा पति को। क्या भोगना पड़ा? पति से विच्छेद हो गया, अपने शरीर को भस्म करना पड़ा इसी अपराध के वजह से, और अंत में पार्वती जी का शरीर लेकर के तपस्या करके तब शंकर जी के शरीर में, और फिर भक्ति ने संदेह नहीं किया। है समझ में? इतना वैष्णव तत्व अपराधी बना इस प्रकार से विचार कर। और एक विचार से उदाहरण नहीं देने से नहीं समझेंगे इन चीजों को, जंगम कराना पड़ा सके उदाहरण के द्वारा बड़ी कठिन चीज भी सरल रूप में समझ में आ
जाए।
और चीज देखिए, महाराज भरत जी थे, आप लोग सबका अध्यक्ष जानते हैं, जड़ भरत। इनका तीन जन्म हुआ, पहले जन्म में भरत महाराज थे प्रसागरा पृथ्वी का, दूसरे जन्म में हरिण बन करके आए, तीसरे जन्म में जड़ तो थे नहीं, चेतन थे। उनको जड़ किस लिए कहते हैं कि संसारिक लोग उनको जड़ देखते थे पागल। उसके पिताजी 10-15 वर्ष तक ओंकार पढ़ाते रह गए, नहीं पढ़ा, उच्चार ही नहीं किया। क्यों? कहीं संसार में आसक्त होकर के प्रभु की भक्ति से दूर न हो जाऊं, पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? यदि भक्ति है, भगवान में प्रेम है, आराधितो यदि हरि, भगवान की आराधना में चित्त लग गया, उनका प्रेम हो गया, तो अब करने की क्या जरूरत है? कर्म ज्ञान योग तपस्या पर कोई भी तपस्या की जरूरत, और यदि भक्ति हो गई भी तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं। यदि भक्ति नहीं है तो तपस्या से भक्ति आ जाएगी? नहीं आएगी, इसलिए तपस्या की जरूरत नहीं। और
अंतर बहिर,
अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तपस्या, यदि अंदर और बाहर में है तो तपस्या इत्यादि की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, इसी के लिए तो सब आराध है। और यदि भगवान हृदय में नहीं है तो तपस्या की क्या जरूरत है? तपस्या के अंदर में बाहर में भगवान आ जाएंगे, इसे तपस्या किसी भी हालत में ठीक नहीं। क्या हो गया? इसलिए उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी, मूर्ख बने रहे, पागल बने रहे, कपड़े पहनाया तो पहन लिया, नहीं पहनाया नहीं पहना, खाने के लिए दे दो तो परपेट करके सब कुछ ले लिया, और नहीं दिया तो यहाँ तक कि जो नौकर चाकर नहीं खाते हैं, गाय भैंस जो खाती है वो चोकर इत्यादि एक साथ में सिद्ध करके दे देते, खाने से मुस्कंद बने। एक समय की बात है, उनको खेत पर रखवाली के लिए रखते हैं, ये कोई काम तो करेगा नहीं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, खेत में तुम रखवाली करो, ये पशु पक्षी आकर के खा ले जाए। उसी समय में आपने 12-1 बजे रात 12 बजे महाराज उसमें पृथ्वी के भट्ट महाराज के वंश में उत्पन्न हुए थे, रघुवण राजा ताकि पचड़ करके रात में जा रहे थे कपिल देव जी के आश्रम। चलते चलते उनका एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी रखती पालकी नहीं बढ़ी, उन्हें कहा जब दूसरे आदमी को खोज करके लाओ, महाराज रात में कहां नहीं मिलेगा, देखो तो खोजो। बेगार समझते हैं, कुछ देंगे नहीं
बिना पैसे
ऐसे, क्योंकि ऐसा हुक्म जमींदारों का पहले होता था, राजा पकड़ लो जो मिले उसको पकड़ लो। देखा जाए 16-17 वर्ष का एक लड़का बड़ा सुंदर और बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठा, आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? उनका चित्त वहां पर लगा है, ऐसे हिलाया जाकर के सोचा कि ये सो रहा है बैठे बैठे, क्या कर रहा है? चलो हमारे साथ से उस करके चलती पकड़ कर ले आकर के पालकी में लगा, पालकी में लग गए, लगने के बाद में चलने लगी पालकी, किंतु ये पैर में पैर मिला करके नहीं चल सकते, ये कभी तो पालकी तो धोया नहीं, ये जानते हो, और कभी कभी कोई कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं तो उनको बचा करके पैसा आगे पीछे करते हैं जो मिलता है। राजा ने कहा बहुत दुबला पतला कमजोर आदमी है, चल नहीं पा रहा, ताना मार रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों नहीं चलती पालकी ठीक से, हिलती क्यों है? तो ये नया वाला आदमी आया ये नहीं चल पा रहा ठीक से, पैर नहीं मिला रहा। और बहुत दुबला पतला आदमी है, बहुत कमजोर है, इसलिए नहीं चल पा रहा, ताना मार रहे। कभी नहीं माने का शासन, जरा रूढ़ कंठ से बोले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैं देश का राजा, खा पी करके इतना मोटा हुआ चल नहीं पाता, तू भार नहीं बंद कर सकता? देखो तुम्हें दंड दूंगा, याद रखेगा जीवन भर याद रखेगा तुम। थोड़ी देर के बाद में जब उसका काना समाप्त हो गया तो बोले कि कौन कमजोर, कौन दुबला, कौन मोटा? यदि भार है तो ढोने के लिए ही है, यदि भार नहीं है तो ढोने लायक नहीं है। कौन राजा, कितने दिन का राजा? कौन प्रजा, दंड देने वाला कौन? खुद ही दंड ग्रहण करने वाला? कुछ ऐसे बातें की राजा ने कहा जा रही, ये तो ही मैं पूछने के लिए जा रहा था, ये सुख दुख इसको होता है, आत्मा दुबली है या पतली है? मठक पाके से महाराज आप कौन है? हाँ जो कल तो चौड़ने गिर गया, पालसी रख दी है, कारण दिखा रही, ये क्या हो गया? महाराज इसके चौड़ों में गिर रहे हैं? वो जैसे तैसे मुस्कुराने लगे, आप कौन थे महाराज? तुम्हारे वंश में पहले पूर्वजों ने फर फराया था, नाम जानता है? तो हाँ जानते हैं, तो बहुत भारी विशाल राजा थे, बड़े धनी मानी सब प्रकार से, बड़े तपस्वी, हम लोग अभी भी चक्रवर्ती राजा उनके चरणों में हम नमन करते हैं। मैं वही हूँ, आप वही? हाँ मेरा तीसरा जन्म है। वो आपके प्रश्नों का जो आपने उत्तर दिया मेरी समझ में नहीं आया, मैं कपिल देव जी के यहाँ जा रहा हूँ, मैं सोचा आपको देख करके कहीं ये परम सृष्टि सनातनंदन तो नहीं, सनातन तो नहीं, कभी नारद तो नहीं, स्वयं कपिल देव जी तो नहीं, मुझे आप कपिल देव जी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप ही हमारी शंकाओं को दूर करके भगवान की कथा की निंदा की अवज्ञा की, ये तो परम वैष्णव है ना, महाभागवत है, और उनको ये किया तो ये अपराध हुआ, किंतु अपराध करने पर भी उनका चित्त द्रवित होकर के और उसको क्या किया है, ये सबका सबका निदान मीमांसा है सारी हम सब। आत्मा दुबला नहीं है, पतला नहीं है, शरीर है, दंड देने वाला और कृपा करने वाला वो एकमात्र प्रभु है, दूसरा नहीं है कोई। मनुष्य जन्म लेकर के उस आत्मा को पहचानना चाहिए कि आत्मा मैं कौन हूं, आत्मा का कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति, और कलयुग में वो भक्ति क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम अरो नाश्ते वो नाश्ते उनके चरणों में फिर है। आज मैं कृतार्थ हो गया, मैं आपके चरण में अपराधी था, किंतु आपने कर्तव्य किए कृपा करके इतना तत्व ज्ञान हमको श्रीमद भागवत में बड़ों को सुंदर दिव्य ज्ञान की बातें, भारत में जरूर इसका पठन प्राप्त होना चाहिए। आजकल जगत में ये सब शिक्षाएं नहीं है, इसी शिक्षाओं के लिए ये वैष्णव लोग आते हैं, संसारी कोई चीज करने के लिए नहीं, कोई प्रतिष्ठा के लिए नहीं आते, इसी का ज्ञान जगत को देने के लिए। सब लोग तो जा नहीं सकते हैं संतों के पास में, संत लोग खुद ही आ जाते हैं और वितरण करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, यहां पर स्वार्थ का आदान प्रदान है तो हम तो उसे भी गए थे जिसके हाथ जाकर के हाथ पास है, हमको ये कुछ दो तो ये मैं कर, ये इसलिए ऐसे ज्ञान का वितरण करने के लिए हमारे जितनी गुरु परंपरा के लोग हैं आज तक इस पर लोगों को जो थोड़ी सी श्रद्धा के मूल्य पर इन चीजों को दी जाए। अब यहां पर यह विचार करना होगा, भरत जी को यदि कोई बद्ध जीव माने यह अपराध हुआ, चित्रकेतु महाराज जी को यदि कोई ये समझे, यहां पर विचार कीजिए, देखिए समझिए, चित्रकेतु महाराज जी मुक्त है किंतु उन्होंने उनको अभिशाप दिया सती ने, जाओ तुम चित्रकेत दिए
असुर बन।
यदि कोई ये समझे कि चित्रकेतु महाराज जी साधारण जीव से वैकुंठ से उतर करके गोलोक से यहां पर आए हैं,
गिर गए
हैं, ये अपराध, ये परम भगवत भक्त है, जगत में उनकी बात लोग नहीं समझेंगे, मुक्त महापुरुष लोग जगत की शिक्षा के लिए परस्पर में ऐसी कोई बात करके जगत में आ जाते हैं शिक्षा देने की, इसलिए सती जी ने भी उनको अभी संपात नहीं किया और न तो चित्रकेतु महाराज जी को अभी संपात लगा, वो तो एक घटना बना करके जगत में अवतरित होने के लिए एक बहाना था, बहाना बना करके जगत में आकर के शिक्षा दिया, किसी भी योनी में कहां भी कोई व्यक्ति रहे वहीं से भगवान की भक्ति हो सकती है, स्थाने स्थित
सुखी
बता।